ओम शांति। सबसे बड़ी शक्ति बोलो पवित्रता। बहुत सुख है इसमें, सुख शांति की जननी है। कल की मुरली से ही गीत बजा दिया भाई ने, प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी, चार स्वरूप बाबा ने याद दिलाए, पांचवा भी है फरिश्ता अनादि। बाबा उसे भी आदि कह रहे थे शुरू का। जब हम आत्माएं हैं तब हम इसको इस तरह लेंगे, अपनी प्योरिटी को बहुत पावरफुल बनाने के लिए। मैं आत्मा बहुत बहुत ज्यादा तेजस्वी परम धाम में बाबा के समीप हूं। कल बाबा ये स्मृति दिला रहे थे, पवित्र आत्माएं तो बहुत हैं, परंतु हम हैं, हमारी चमक बहुत ज्यादा और बाबा के समीप। उसे देखा करें, आदि स्वरूप, देव स्वरूप, बहुत आकर्षक। उसे देखा करें, पूज्य, अपना पूज्य स्वरूप निश्चित कर ले। ब्राह्मण जीवन की बहुत अच्छी बातें दो तीन कही, परमात्म प्यार में और उससे पहले पालना में, बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा की पहली रचना, डायरेक्ट रचना। किसी ने राजा के घर जन्म लिया हो, उसके बच्चों को लोग किस नजर से देखेंगे, बड़े भाग्यवान हैं राजकुमार राजा के घर। और हमने किसके घर जन्म लिया बोल नहीं रहे, लिया ही नहीं जैसे। किसके घर जन्म लिया, माँ हुई भाग्य विधाता ब्रह्मा, सृष्टि की नंबर वन आत्मा, और बाप सबसे बड़ा। हम अगर इस स्मृति में रहें तो धारणाएं करना बिल्कुल सरल हो जाए। मैं कुछ रिपीट करा लेता हूं, पवित्र आत्माओं की दृष्टि कैसी होगी बोलो। ये उत्तर भाइयों से नहीं, मैंने कुछ और पूछा है, दृष्टि कैसी होगी आत्मिक, कृति कैसी होगी। देखो इस सूक्ष्म बात को सबको समझना है, पवित्रता का नाता सुख लेने और देने से है। कोई कटु वचन बोलकर दूसरों को दुख देता रहे तो समझ ले उसमें प्योरिटी की बहुत कमी है। और पहला क्या था, वृत्ति कैसी, बिल्कुल बदल जाए दृष्टिकोण, सबके लिए चित्त निर्मल होके शुभ भावनाओं से भर जाए, ये पवित्र आत्मा के लक्षण हैं। एकाग्रता के लिए क्या कहा, मन को जहां चाहो जब चाहो जितना समय चाहो एकाग्र कर लो। और कौन सा काम दिया जो आप सबने आज भी किया होगा, नहीं किया तो अब से चालू कर देंगे बोलो, माताएं पीछे वाले उत्तर देंगी, पीछे वाले श्रोता नहीं बनेंगे बोलता भी बनेंगे। बोलो पीछे वाली बहने, बाबा ने कल एक होमवर्क दिया, सूरज पानी, अरे बोलो ना इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो, पानी बरसाता भी है और पानी सुखाता भी है, रात को दिन भी बना देता है और दिन को रात भी। हम कौन हैं? मास्टर ज्ञान सूर्य। ये बाबा ने काम दिया, अपने इस स्वरूप को इमर्ज करो, बढ़ाओ, किरणें फैलाओ सबको सुख शांति देने के लिए। तो हम भी बड़े काम कर सकते हैं इस स्वरूप से। तो बहुत अच्छा अभ्यास सभी। मैं क्या हूँ? मास्टर ज्ञान सूर्य। और अच्छा अभ्यास करेंगे कि मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, भ्रकुटी से सामने जा रही हैं, नैनों से सामने फैल रही हैं, अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें। ये सब बाबा ने कहा हुआ है। ऐसी प्रैक्टिस करने से एकाग्रता बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि योग में सबसे ज्यादा जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता बहुत बड़ी शक्ति है। वो पढ़ाई में भी चाहिए, योग में भी चाहिए और कार्यों में भी चाहिए। हम काम भी करते हैं, अगर एकाग्र नहीं है तो कुछ का कुछ करेंगे, गलती करेंगे। माताएं एकाग्र नहीं भोजन बना रही हैं तो नमक की बजाय बूरा डाल देंगी, दोनों सफेद हैं, चीनी डाल देंगे। तो एकाग्रता की बहुत जरूरत है, परंतु सबकी एकाग्रता को नष्ट करने वाली कौन सी चीज है? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। माया को क्यों बेचारी को दोष देते हैं? माया कह के हम छूट गए, हम ही हैं उसके जिम्मेदार, माया नहीं। व्यर्थ चिंतन करने की आदत, व्यर्थ देखना और व्यर्थ पढ़ना सुनना। अब हम सारा दिन व्यर्थ सुने और कहें माया बहुत व्यर्थ संकल्प चलवाती है। माया बेचारी ऐसे ही कहेगी, मैंने कुछ किया नहीं, ये मुझे दोष दे रहे हैं। माया नहीं, जिम्मेदार हम हैं। दो शब्द और बोले बहुत अच्छे, मेरे की जगह क्या कर दिया है ब्राह्मणों ने अब? अरे नहीं, तेरा नहीं, मेरे की जगह मेरा बाबा। अब तक बाबा करते थे, मैं घुमा के पूछा थोड़ा, इसलिए आप लोग उसमें सोच नहीं पाए। पहले कहते थे बाबा, अब लेकिन केवल कहते नहीं, कहने से काम नहीं चलेगा। एक माता मेरा बाबा भी कर रही थी, रो भी रही थी, पति ने बहुत तंग किया, बाबा मेरे बाबा, रो भी रही है। ये नहीं, बाबा मेरा है, ये गहरी फीलिंग कि जो भगवान है वो अब मेरा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे ढूंढ रहे हैं, जिसे केवल देखना चाहते हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो हमारा हो जाएगा। भक्ति में गीत गाते थे, वो गीत बहुत प्यारा भक्ति का भी, भगवान से कह रहे हैं भक्त, एक बार अपने मुख से कह दो तुम मेरे हो, और फिर दूसरी लाइनों में है तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ। तो हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन भक्ति में संगम युग की यादगारें हैं, अवश्य पूरी हैं। यहाँ हमने कहा हम तुम्हारे, तो बाबा ने कहा हम तुम्हारे, समीपता हो गई। तो भक्ति में उसको याद करते रहे, भगवान एक बार कह दो हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। उसने बाकी रोज कह दिया मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, कितना अपनापन दिया। इस अपनेपन को याद करके योग में उसके प्यार में मगन स्थिति बनाना, ये होगा मेरा बाबा। और जब मेरा बाबा गहराई से जीवन में आ जाएगा तो क्या फायदा होगा। अब ये गहरी बात है, भाई बताएंगे। जब मेरा बाबा गहराई से आ जाएगा अनुभवों में, जीवन हो गया हमारा, हम और मेरा बाबा, तो क्या होगा, और मेरे मेरे छूट जाएंगे। क्योंकि संसार में बहुत संघर्ष तेरे मेरे से है, घरों में अनेक घरों में संघर्ष तेरे मेरे से है या नहीं। बहुतों के घरों में संघर्ष होगा। मेरा बाबा यदि कर लिया जाए तो ये तेरा मेरा छूट जाएगा, घरों में सुख शांति आ जाएगी। मैं की जगह मैं आत्मा नहीं, और आगे स्वमान, आत्मा आत्मा नहीं केवल स्वमान। तो जितने स्वमान में हम रहेंगे विचार महान होंगे। छोटे विचार ही कष्टों का कारण है, सब जगह देख लो, छोटे विचार ही मन को भटका रहे हैं। बाबा की मुरली है बहुत पहली, 45 साल हो गए होंगे, 10 मिनट अगर तुम योग में बैठो और अपने को गहराई से चेक करो कि मन किधर किधर जा रहा है, तो उसके जाने के कारण होंगे मैं और मेरा। अगर इससे हम मुक्त हो जाएं, तभी संपूर्ण रूप से एकाग्र चित्त होंगे। सभी ध्यान दें, बहुत बहुत बड़ी स्थिति है। 1.5 साल पहले बाबा ने कहा था, ऐसी आत्माएं जो मन बुद्धि को जहां चाहे स्थिर कर सकें, उन्हें टाइटल मिलेगा। बोलो किसको याद है, जिसको याद होगा वो इस टाइटल का हकदार है। सुशील तुम्हें होगा नहीं, योगेश्वर, वे योगेश्वर हैं, योग युक्त हो जाएंगे। बाबा को भी योगेश्वर कहते हैं और वे भी योगेश्वर होंगे। अब हम इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे, जो बाबा ने कहा क्या बताया, सुख सुख देना है और सुख लेना है, और क्या नहीं देना लेना है। अब गहराई से इस पे चिंतन करेंगे। यही बात नहीं, हम कई बुरी चीजें लेते हैं, चिंताएं भी लेते हैं, परेशानियां भी लेते हैं, दुख भी लेते हैं। अब कैसे न लें, खराब चीज है ये सब, पर हम लेते हैं। कभी बाबा ने ये भी कहा, कोई तुम्हें खराब चीज दे लोगे नहीं, तो जब नहीं लोगे तो किसके पास रह जाएगी, जो देना चाह रहा था उसके पास। हम अपने को जरा स्ट्रांग बनाएंगे, इस पे गहराई से विचार करेंगे। बहुतों में दुख लेने का संस्कार है। कैसे, किसी ने इंसल्ट की, किसी ने उल्टा सुल्टा बोला, किसी ने हमारी भावनाओं को हर्ट कर दिया, फीलिंग हो गई दुखों की, योग टूट गया, खुशी नष्ट हो गई। होता है या नहीं होता है। अब इस पे विचार करना है आज कि हम इस तरह दुख न लें, क्या करें। केवल चिंतन की बात है, दृष्टिकोण को बदलने की बात है। और भी देखो, आपके संबंधों में किसी की मृत्यु हो गई, मृत्यु थोड़ी खराब हुई, कोई जिम्मेदार व्यक्ति था, उसके बिना परिवार खाली हो गया, जैसे उसके दुखों की लहर आप तक भी आ गई। दुख की बात तो है, लेकिन वो दुख आप तक भी आ गया। और आगे सोचें, आपके परिवारों में अच्छा व्यापार है, व्यापार में कुछ गड़बड़ हो गई बहुत ज्यादा, दुखी हो गए लोग, उसकी लहर अब तक भी आ गई। अब जो भिन्न भिन्न बातें होती हैं, आपका बच्चा बीमार हो गया, ज्यादा बीमार हो गया, वो कष्ट में है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, ये सत्य है कि उसे बहुत कष्ट है, तो मां को कष्ट होगा या नहीं? माताएं बोल नहीं रही, होगा। अब बोल के हंस रही हैं, होगा यानी नहीं होना चाहिए, क्या विचार है? बिल्कुल नेचुरल बात है कि किसी अपने व्यक्ति को कष्ट हो रहा हो तो हमें भी कष्ट होता है, लेकिन जो आत्माएं ज्ञान और योग से सजी हुई हैं, उनको क्या सोचना चाहिए? अब इसको ठीक करना है हमें कि अगर हमें कष्ट होगा तो हम दूसरों का कष्ट निवारण नहीं कर सकेंगे। एक माता का यंग लड़का जो 12वीं क्लास में पढ़ता है, पास में ही चक्कर खा के गिर गया, मां को फटाफट मैसेज आया, आधे मिनट में पड़ोसी ने मैसेज दिया, तुम्हारा लड़का रास्ते में गिर गया है। उसके सुनते ही मां भी गिर गई। अब हॉस्पिटल कौन ले जाए? कोई नहीं था घर में, सच्ची घटना सुना रहा हूं, कोई नहीं था घर में। अब पड़ोसी ले गए, अब पड़ोसियों को तो देर लगेगी ना, वो बेचारे इंतजाम करें, वो होती तो ठीक होती तो फटाफट ले जाती ना, तो कितना कष्ट हुआ होगा। अगर ऐसे में हार्ट अटैक हो गया हो तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी ना। दूसरा केस ऐसे ही, बच्चा गिर गया, उसकी मां को मैसेज मिला, 2-3 मिनट के रास्ते पे थी, वो घबराई नहीं, उसने बाबा को याद किया, तुम्हारा बच्चा है संभाल लेना, आराम से गई, रिक्शा वाले को बुलाया, बैठाया उसको, उठा के ले गई हॉस्पिटल, ठीक हो गया। तो एक केस में उसने दुख ले लिया तुरंत, और इतनी गहराई से इफेक्ट हुआ कि वो भी बेहोश हो गई, और दूसरे केस में उसने अपनी स्थिति को संभाला है तो उसको ठीक कर लिया। हम इस बात को जरा ध्यान दें कि विभिन्न घटनाओं का इफेक्ट हम पर कितना जल्दी आता है। संसार में आगे जो कुछ होने जा रहा है वो अति कष्टदायी होगा, वो कैसा होगा उसको हम में से कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, विनाश में क्या क्या होगा कोई नहीं जान सकता। बाबा ने तो मोटी मोटी बातें बताई है, इस कांटों के जंगल को आग लगेगी, बात तो छोटी सी, हम सोचते होंगे कहीं जा कांटों का बगीचा होगा उसको आग लग जाएगी, हम तो इधर हैं। ये भी कहा होलसेल मौतें होंगी, होलसेल माना एक ही साथ बहुत बहुत। ये भी कहा कि प्रकृति के 5 तत्व फुल फोर्स से एक साथ अटैक करेंगे, उसमें पानी और अग्नि बहुत ज्यादा विनाश करेंगे। ये भी कहा धरती में भूकंप बहुत ज्यादा तबाही करेंगे। ऐसे में कौन स्थिर रह सकेंगे? जिन्होंने लंबे काल से बहुत अच्छे अभ्यास किए हैं, योग भी किया है, साक्षी भाव भी अपनाया है, वाइब्रेशंस देने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, थोड़ा डिटैच होने का भी अभ्यास है, ध्यान दें इस बात पर, थोड़ा घटनाओं से डिटैच। आपके संबंध में किसी की मृत्यु हुई है, आप वहां गए हैं, सभी रो रहे हैं, अब माताएं तो रोने भी जाती हैं, आप भी रोने लगी, कैसी रस्म है देखो भारत में, रोने कहाँ जा रहे, रोने जा रहे भाई किसी की मृत्यु, सब दी खराब है ना। अब मृत्यु हुई है, आप भी वहां गए हैं, अपने को इससे थोड़ा डिटैच करें, सीखें सभी भाई बहने, थोड़ा उस घटना से अपने को डिटैच करें, डिटैच माना उसके प्रभाव से अपने को मुक्त रखें, और अब याद करें मैं यहां आया हूं मुझे क्या करना है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं इन सभी को शांति के वाइब्रेशंस देने के लिए आया हूँ। रोने वाले तो ये बहुत हैं, मुझे नहीं रोना है। माताएं तो गड़बड़ भी करती है ना, मुंह ढक लेती है, रोती नहीं है, हू करती रहती है। मैंने देखा है बचपन में, लोग मजाक करते थे, ये रो नहीं रही, ऐसे ही दिखावा कर रही हूँ। तो आप उससे अपने को डिटेच कर लो जरा, बुरा नहीं मानना भाई माताएं। मैं तो बहुत दिन से दुनिया से दूर हूँ, 50 साल तो यहाँ हो गए, मुझे पता नहीं अब क्या क्या चलता है दुनिया में। थोड़ा डिटेच करके उन्हें वाइब्रेशंस देंगे, ये आदत अभी से पक्की कर लेनी है। और एक सुंदर प्रैक्टिस करेंगे सभी भाई बहने। कहीं आप देखते हैं कि अशांति हुई है, लोग लड़ रहे हैं। जब हम रास्तों से भी जाते हैं तो कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग लड़ाई झगड़ा करने शुरू कर देते हैं, और भी कहीं किसी बात पे लोग लड़ाई करते रहते हैं, आप देखा। तो अपने को इससे डिटैच करके, समझ गए ना डिटैच कर। एक है कि हम भी वहां जाके देखने लगे, जैसे लोग करते हैं ना, 10-20-50-100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उन्हें देखने लगेंगे। हम डिटैच करें अपने को, और मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, इस स्वरूप में स्थित होकर शांति की किरणें भेजें वहां, और परिणाम देखें कितना जल्दी शांति होती है। आपके देखते देखते ही भी हो सकती है कि 5 मिनट में ही वो लोग फैसला करके चले जाएंगे, अच्छा भाई छोड़ो लड़ो नहीं, ऐसे कर लेते हैं। ये सब अनुभव करने हैं, तो हमें दुखी होना नहीं है, न किसी के शब्द सुनकर, न किसी के अपमानजनक शब्द सुनकर, न कोई घटनाएं दुर्घटनाएं देखकर, न अपनी बीमारियों में, न बच्चों के किसी कष्ट में। आप कहेंगे बच्चों को कष्ट है, माँ कष्ट क्यों न ले? इससे आप बच्चों का कष्ट नहीं ले सकेंगी। कष्ट कब लेंगे? माताएं उत्तर देंगी, डिटैच होके जब उसे वाइब्रेशंस देंगी। आपके बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है आज, आपको दवाई तो खिलानी है, माताएं किचन से भी कुछ बना के पिला देंगी, लेकिन साथ में उसे वाइब्रेशंस भी दे दें तो उसका दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। और आप परेशान हो गई, बच्चे को पेट दर्द है, डॉक्टर को फोन कर रहे, फोन नहीं लग रहा है, फोन कोई उठा नहीं रहा। देखो ऐसी परिस्थिति आएंगी और आती हैं, रात है, 1 बजा है, कोई फोन नहीं उठा रहा, आपके घर में कोई नहीं है, लोग इधर उधर गए हैं, कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, और बच्चे को पेट दर्द बहुत हो रहा है, वो तड़फने लगा है, क्या करेंगे भाई? लोग उत्तर दें, पानी चार्ज करके पिला दो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और क्या करेंगे? पहला काम सभी करेंगे परेशान ना होकर, बाबा का आह्वान। ये सबको आदत डालनी है कि जब परिस्थिति ऐसी हो जाए कि हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है, फोन लग ही नहीं रहे, ऐसा भी संभव है फोन ही न लगे, सब लाइन फेल हो जाए, एंगेज आ रही हो, गड़बड़ हो जाए, तब हमें ये नेचुरल प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि हम तुरंत बाबा का आह्वान करेंगे। और फिर बाबा को कह दो कि इसके सिर पे हाथ रख दो और देखो इफेक्ट देखना। बाबा की उपस्थिति से अनेक चीजें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये बहुत बड़े अनुभव सबको करने हैं। आपके घर में चोर भी आ जाते हैं, क्योंकि आएंगे जब अन्न नहीं मिलेगा लोगों को, जब बहुत अशांति हो जाएगी, भूख बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर भूकंप होते हैं तो ट्रक तो चलेंगे ही नहीं, थोड़े दिनों में अनेक समस्याएं आने लगेंगी, तो लूट मार बहुत हो जाएगी, ये बाबा ने बताया हुआ है। ऐसे में यदि बाबा को आह्वान करने का संस्कार पड़ा होगा तो आपके घर की तरफ देखेंगे ही नहीं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। अब मुझे पूरी घटना याद नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी थोड़ी आ रही है। एक व्यक्ति की, किसी परिवार की ब्रह्मा कुमारियों से थोड़ी सी मन मुटाव और दुश्मनी थी। उसने गुंडों को बुलाया रात को कि भाई उनको मारना है, जाके जगह बता दी, इस इलाके में है, घर उसका भी पास ही था जिसके दुश्मनी थी। कहा निशानी क्या होगी? कि लाल लाइट जली होगी। अब वो पहुंच रहे थे वहां, उधर ढूंढ रहे थे। उस दिन बहनों ने सारी लाइट बंद कर ली थी और अचानक जब वो आगे बढ़ रहे थे, लाल लाइट जली हुई थी उसी के घर में जिन्होंने उनको भेजा था। और वो तो उनको थोड़ा ही समझ है, वो अंदर घुसे में थे, शराब वराब पिलाए थे और पांच थे, पांचों को मार के चले गए। क्या हुआ ये सोचो, बाबा की सुरक्षा, उसको भी सजा मिल गई और बाबा ने अपने बच्चों को बचा लिया। क्योंकि विरोध तो लोग ऐसे ही करने लगते हैं ना किसी बात से। तो हम बाबा का आह्वान करना, इसको अपनी आदत बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में हम सभी को निर्भयता की भी बहुत जरूरत पड़ेगी या नहीं। इसलिए निर्भय हो जाएंगे हम तुरंत बाबा जब दिखाई देगा। बाबा ने ये कहा हुआ है, विनाश के समय में तुम्हें ऐसा अनुभव होगा, मेरा बाबा कहा और बाबा है, पास ही है, दिखने लगेगा, उसकी उपस्थिति फील होने लगेगी। बाबा इधर उधर ब्रह्मा तन में आ गया है, दिख रहा है, और उसके होते ही हम निर्भय भी हो जाएंगे और परिस्थितियां तुरंत बदल जाएंगी। तो हमें दुख लेने का जो संस्कार है उससे बचना है। साथ में ये भी याद रखना है, थोड़ी सी गहराई से सुनेंगे, देखेंगे, इस पे चिंतन करेंगे, जो व्यक्ति दूसरों को दुख ज्यादा देता है उसमें दुखों को सहने की शक्ति नहीं रहती। इसलिए इस चीज पे भी उतना ही ध्यान देना है कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट दिया तो नहीं जा रहा है। प्राय दुख देने वाले इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि वो भी दुख दे रहे हैं। वो कटु वचन बोलते हैं, कहेंगे ये ऐसा करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन क्रोधवश या पूरी भावनाओं वश या बदले लेने की वृत्ति के वश मनुष्य दूसरों को कष्ट देता है। उसमें भी अगर कोई पवित्र आत्माओं को कष्ट दे, सोचो, अब एक कन्या अभी सेंटर पे आई है, पवित्र है वो, उसके मन में बहुत उमंगे हैं, मैं अपने जीवन को समर्पित करूंगी, मैं यही अच्छे काम बाबा के करूंगी, मैं इतना इतना योग करूंगी, लेकिन कोई उसे कष्ट देने लगे, इसका रिटर्न कितना होगा? हजार गुना। इसलिए विशेष रूप से, जैसे परसों की मुरली में था ना, पवित्रता के लिए याद करो, पवित्र आत्माओं के प्रति, पूज्य आत्माओं के प्रति यदि ये पवित्र दृष्टि है, तो इसको बाबा ने क्या कहा? महा महा पाप है। ऐसे ही पवित्र आत्माओं की खुशी यदि कोई छीनता है, पवित्र आत्माओं को अपने स्वार्थवश कोई कष्ट पहुंचाता है, तो उनके मन से निकली हुई बद्दुआएं निकलेंगी तो जरूर, वो छोटी कन्या ही है, उसके विचार अभी ऐसे तो नहीं ना, ये कोई बात नहीं भाई, चलो तुमने बोला कुछ नहीं, वो तो उमंग लेकर आई है, बहुत कुछ करने के इरादे से आई है, लेकिन उसकी उमंगों पर पानी फेर दिया जाता है तो इसका परिणाम ऐसा करने वाले पर बहुत बुरा होता है। इसलिए हम ये भी आदत डालें कि अब हमारा जीवन दूसरों को सुख देने के लिए है। संसार में दुख तो चारों ओर दिया जा रहा है। मनुष्य मनुष्य को क्या दे रहा है? विकारों के कारण कष्ट है। मनुष्य तो उसका एक बाहरी स्वरूप है ना, पर दुखों का कारण क्रोध है, दुखों का कारण अभिमान है, दुखों का कारण मनुष्य का स्वार्थ है, उसकी व्यर्थ की इच्छाएं हैं। तो हम इस पे पूरा ध्यान दें और अपने को चेक कर लें कि हमारे द्वारा किसी को दुख तो नहीं दिया जा रहा है, हमारे द्वारा किसी को डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है, हमारे द्वारा किसी की स्थिति तो नहीं बिगड़ रही है। नहीं तो इसे बाबा ने क्या कहा है, सूक्ष्म होने वाले पाप। ये होने वाले सूक्ष्म पाप हैं जो इकट्ठा होते होते आत्मा को इतना भारी कर देते हैं कि योग लगता ही नहीं है। रोज एक दो मेरे पास ऐसे आ जाते हैं, कोई भाई कोई माता, कि योग नहीं लगता, बहुत कोशिश कर ली योग नहीं लगता। मैं उनको जरा देख लेता हूँ ध्यान से, थोड़ा सा चेहरे पे क्या है, परेशानी। कौन व्यक्ति परेशान है संसार में? जो दूसरों को परेशान करता है। तो उनका इकट्ठा होता होता पाप उनके मन बुद्धि को भारी कर देता है और योग लगेगा नहीं। इसलिए योगयुक्त वही हो सकते हैं जो पुण्य बहुत करते हों। पुण्य का फल हमें उड़ाने वाला होगा, पाप का बोझ हमें नीचे गिराने वाला होगा, भारी करेगा। तो न दुख देना है, पर इम्पोर्टेंट है कि लेना नहीं है। मैं एक माता की कहानी सुनाया करता हूँ, गुप्त रूप से सुना देता हूँ। उसकी एक सखी थी, उसके पति की मृत्यु हुई, बुजुर्ग था वो भी। ये बहन दो चार दिन के पास इस बहन के पास आई जो ज्ञान में है कि भाई उसके पास चलूं, उसको कुछ सुनाऊं अपना दुख। वो ज्ञान लेती है, मुझे कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाएगी। उसने अपना सारा दुख, दोनों छत पे बैठ गई, उसने अपना सारा मन का बोझ सुना दिया, उसे दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। माताएं ट्रांसफर करने में बहुत बुद्धिमान है, कर दिया ट्रांसफर। अब वो तो चार घंटे बातें की उन्होंने, वो मेरे पास आए थे दोनों, चार घंटे बातें की दोनों ने ऊपर। ये उसका पति उनको बार बार बुलाता, बस बहुत हो गया, सो जाओ। नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट काम चल रहा है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट काम चलता है माताओं का। वो तो हल्की होके चली गई अपने घर। इसको क्या हुआ होगा, रात को नींद नहीं आई और सवेरे तक इसको हो गया पैरालाइज, लकवा। डॉक्टरों को बहुत दिखाया, डॉक्टरों से कुछ नहीं हुआ। तब इस भाई ने कहा, इसका इलाज आप नहीं कर पाओगे, मैं ही करूंगा। उसको वापस ले आया और उसको क्लासेस सुनाने लगा, अच्छी अच्छी नशा सुन देने लगा उसको, बाबा की अच्छी अच्छी नशे की बातें, मुरली सुनाने लगा। 15 दिन में ठीक हो गई। इस घटना, ये सच्ची घटना है, मैं थोड़े में सुनाई आपको, इससे भी ज्यादा थी। अब आप इसका विश्लेषण करो, इस पे विचार करें कि उसका दुख था, उसका पति शरीर छोड़ा था, उसने इसको सुनाया, ठीक है वो हल्की हो गई, तो इसको भी हल्का हो जाना चाहिए था ना, कि भाई वो बहुत दुखी थी, मुझे सब कुछ सुना के चलो अच्छा हुआ, हल्की हो गई। उसने भी दो चार अच्छी बातें सुना दी, भाई आत्मा हो, आत्मा का हिसाब किताब पूरा हुआ, अच्छे घर जाके जन्म लेगी, तुम उसे अच्छे वाइब्रेशंस देना, तो आत्मा हल्की हो गई। लेकिन इसने क्या किया, उसका दुख अपने अंदर ले लिया। ये गलती हो गई, یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی ہے. ایک ہنسی کی بات سنا دیتا ہوں. کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو تو برا نہ ماننا بھائی. میں لوگوں کو دیکھتا تھا جو من کے روگوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, وہ آخر تک جاتے جاتے من کے روگی بن جاتے ہیں. میں وہ شبد اب یوز نہیں کروں گا جو لوگ کرتے ہیں. تو میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا جو منوں کے روگوں کا چکتسک ہے, میں نے کہا کیا بات ہے, یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ من روگوں کا چکتسک ہے, اس کو بھی سارے من کے روگ ہو جاتے ہیں. کہا ہماری ایجوکیشن میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے, اب وہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے یہ مجھے پتا نہیں. کیا کہ جب کوئی تمہیں اپنا دکھ سنا رہا ہے تم اس کا دکھ پورا اپنے پر لے کر فیل کرو یہ کتنا دکھی ہے, پھر علاج کرو. تو میں نے کہا یہ تو کسی غلط ویکتی نے ایجوکیشن میں ڈال دی ہے بات. تم اس کا دکھ اندر لیتے لیتے تو تمہارا حال بگڑ گیا ہے, لینا کیوں ہے, یہ تو ہم ویسے ہی سمجھ سکتے ہیں نا دوسرا ویکتی کتنا دکھی ہے, اس کو اپنے اندر لینے کی ضرورت کہاں ہے. ہوتا یہی ہے کہ جب لوگ دکھ سنانے آتے ہیں بہت تو منوش پر کہیں نہ کہیں اثر ہوتا ہے. ڈاکٹر اس کو لیتے ہو یا نہ لیتے ہو, پر کوئی کوئی ڈاکٹر جو سینسیٹیو ہوگا وہ لے لیتا ہے بےچارے, اس کو دیا آتی ہے بہت, یہ بےچارے کتنے دکھی ہیں. میرے پاس بھی بہت لوگ آتے ہیں دکھ سنانے, میں ساودھان رہتا ہوں کہ یہ دکھ ان کا ہے میرا نہیں ہے. بہت آتے ہیں میرے پاس, مجھے بھی لوگ کہتے ہیں ساودھان کرتے ہیں, تم سب کے دکھ سنتے رہتے ہو تم پہ بھی اثر آ جائے گا. میں کہتا ہوں مجھ پہ نہیں آئے گا, کیونکہ میں ان کے دکھ کو سویکار ہی نہیں کرتا. جو دکھی ہے اس کا ذمہ دار وہ سوئم ہے, اور ہمیں تو اس کو مدد کرنی ہے. اور مدد ہم تبھی کر پائیں گے جب ہم دکھوں سے مکت ہوں گے. جنہوں نے اپنے اندر ایشوریہ سکھوں کا خزانہ بہت بھرا ہوگا وہی دوسروں کے دکھوں کو مٹا سکیں گے. یہ ایشوریہ سکھوں کا خزانہ کب کب ملتا ہے ہمیں بتاؤ. پہلے امرت ویلے, دوسرا مرلی کے سمے, یوگ جب بھی کریں گے تب. اور ایک پریکٹیکل بات, آپ لوگ سبھی مدھوبن میں بیٹھے ہیں, سنسار کا سب سے مہان تیرتھ ہے یہ, سب سے زیادہ پنیہ بھومی ہے یہ, تپسیا کی بھومی ہے, جہاں اس مہان تپسوی نے تپسیا کی جس کو برہما کہتے ہیں اور ماما جگدمبا. ایسی بھومی پر آ کر سکھ ملا ہے یا نہیں, بھر رہا ہے اندر سکھ, یہاں آتے ہی سکھ مل جاتا ہے. اور یہ بھومی آگے چل کے ایسی پرکھیات ہو جائے گی, دکھی لوگ گیت میں پرویش کریں گے, گھوم کے جائیں گے سکھی ہو کر واپس. یہ سمے آ رہا ہے تیزی سے, یہ وردان بھومی, یہ سبھی کے لیے لائٹ ہاؤس. گیان تو یہاں سے ملے گا ہی, پر یہاں آنے سے ہی لوگوں کے تناؤ دور ہوں گے. یہاں آنے سے ایک بہت بڑا کام اس بھومی سے ہونے والا ہے, ساکشاتکار بھی ہوں گے, آپ نے ٹھیک کہا. لیکن یہاں آتے ہی لوگوں کے روگ بھی سماپت ہوں گے. پانی لیا کریں گے یہاں سے, کہ یہاں کے پانی بوتل بھر کے لے چلو, جیسے گنگا جل لاتے ہیں نا, یہاں سے لے چلو, ابھی بھی لے جاتے ہیں, اس کو پیتے رہنے سے روگ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ بھومی جو بہت سکھ دے رہی ہے, اس سکھ کو بھرتے چلیں. جو سیوا میں آئی ہے ماتائیں بھائی, سیوا کا بھی سکھ ملتا ہے یا نہیں؟ گھر میں وہی کام آپ کرو وہاں سکھ نہیں ہوتا, وہ کام ہوتا ہے. یہاں سیوا ہے, سیوا بھاو ہے, سبھاونائیں ہیں, اس لیے یہ سیوا بھی بہت سکھ دے رہی ہے. یہ سکھ بھرتے चले अपने अंदर, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में सुख बांटने हैं, बहुत बांटने होंगे। बांटेंगी माताएं, भर लो अब, छोटी बात में दुखी नहीं। अब ऐसा कर दे अपने को साक्षी कि दुख नहीं, दुख से हमारा नाता नहीं है, आंसू बहाने वाली नहीं है माताएं। माताएं क्या करती हैं, इसी से जोड़ो, आंसू पहुंचती हैं, लेकिन पहुंचते पहुंचते खुद भी बहाती रहे ये नहीं। माताएं सभी आंसू पहुंचने वाली हैं, आंसू बहाने वाली नहीं। अपने को तैयार करो, हमें संसार के आंसू पहुंचने होंगे, इसलिए दुखों की फीलिंग से ऊपर। मुरली चली थी बहुत साल पहले इसी हॉल में, मुझे अब तक याद रहती है, मेरे को छू गई थी वो मुरली। तुम सुख सागर के बच्चे हो, तुम्हें संसार में सुख देना है सबको, जरा सा भी दुख तुम्हें स्पर्श भी न करे। ये सब थे बाबा के, दुख जरा सा भी स्पर्श न करे, तब से मुझे याद है ये बात। तो ये हमारे अपने ऊपर है कि हम दुखों की फीलिंग से ऊपर रहें। तुरंत दुखी हो जाना या अपने कर्तव्य को याद रखना, बस जब भी कोई दुखों की घटना आपके आस पड़ोस में, संबंधों में, परिवारों में, बीमारी के रूप में आती हो, तो तुरंत याद करना मेरा कर्तव्य क्या है। अब दुखी तो सब लोग होंगे, लेकिन हम सबके दुख निवारण करेंगे। और ऐसा समय आएगा कि जहां एक पवित्र आत्मा खड़ी होगी ना, बाबा का बच्चा, मान लो हॉस्पिटल है और बहुत दुख दर्द भरा माहौल है, लाशें आ गई हैं 50-100, दुख भरा माहौल है, होगा ही। और एक बाबा का बच्चा, बहुत पवित्र आत्मा, बहुत श्रेष्ठ आत्मा वहां उपस्थित है, मास्टर ज्ञान सूर्य, तो वहां के दुखों के माहौल को हल्का कर देंगे। उनकी उपस्थिति से ही दुखों का भारीपन हल्के रूप में बदल जाएगा, लोग स्वीकार कर लेंगे, मैं मृत्यु हो गई है, अब हमें वो करना है जो मृत्यु के बाद किया जाता है, इसमें अब दुखी होने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब ऐसी मृत्यु होती है तो आप सब जानते हैं कितना रोना पीटना, दुख होना, किसके कोई मर गए, किसी के कोई मर गए, ये सब खेल बहुत चलेगा। तो बहुत अच्छा अभ्यास, कौन हूं मैं, मास्टर ज्ञान सूर्य, और साथ में ज्ञान सूर्य की किरणें आ रही हैं। और लास्ट बात वो सुना दूं जो बहुत पावरफुल बात है, स्लोगन भी हमारे यहाँ लिखा हुआ है कहीं, तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलाना, बाकी का काम तो निमित्त मात्र है। बाबा ने कभी कहा था, ये सब काम तो तुम्हें बिजी रखने के लिए दिए हुए हैं, असली काम तुम्हारा ऊपर से किरणें लेकर चारों ओर फैला देना है। तो फैलाएंगे ना अभी, चलो रेड लाइट, और इसी का अभ्यास के साथ सोएंगे, उठते ही इसे शुरू करेंगे, ऊपर से बाबा की ज्ञान सूर्य की किरणों की रिमझिम हो रही है हमारे ऊपर, हमसे फैल रही हैं।